अब अल्लाह ताला शऊर को बेदार करते हैं, आया वद्दु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई चाहता है अन तकून लहू जन्नत मिन नखीलिन, कि उसमें से उसका एक बाग हो खजूरों का, व अनाबिन और अंगूरों का, तजरी मिन तहती अल अनहारु, जिसके नीचे नहरें बहती हों, लहुम फीहा मिन कुल्लि समरा, और उसमें वहां हर तरह के फल हों। इतनी बात हम सभी चाहते हैं, खजूर भी हो, अंगूर भी हो, बाग भी हो, पानी भी हो। लेकिन अगली बात बड़ी खतरनाक है, वह असा बहुल किबर, और उसको पहुंच जाए बुढ़ापा, वलहू जुर्रियत दुआफा, बच्चे अभी कमजोर हैं, यानी खुद बूढ़ा हो गया और मेहनत नहीं कर सकता, बच्चे अभी छोटे हैं, इतने में क्या हुआ, फअसा बहा ए सारुन फीही नारुन, फिर उस बाग को पहुंच गया एक आग का बगोला। ए सार वही लफ्ज है जिससे लफ्ज असर है, निचोड़ को कहते हैं। बगोले से मुराद क्या है कि जैसे एटम बम ढेर है उसके अंदर आग का। किया क्या उसने, फाह तरकत, फिर उसने उसको जला दिया, हरका से हरका। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून, इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए निशानियां या आयतें ताकि तुम तफक्कुर करो, ये कौन है और ये किसकी बात हो रही है। उबैद बिन उमैर कहते हैं, एक दिन अल्लाह के नबी ने सहाबा से पूछा कि क्या आप लोग जानते हो ये आयत किस सिलसिले में आई, यही जिसकी बात हुई है। तो सब ने कहा कि अल्लाह ज्यादा जानता है। हजरत उमर नाराज हो गए, कहा साफ जवाब दो, पता है कि नहीं पता, यानी हजरत उमर जरा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। तो इब्ने अब्बास ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे दिल में एक बात आती है। कहा बेटा बताओ, कहो और अपने आप को कीर ना समझो। इब्ने अब्बास चूंकि छोटी उम्र के थे ना, तो महफिल में बोलते नहीं थे, कहते थे इतने बड़ों के बीच में मैं क्या बोलूं। तो खैर इब्ने अब्बास ने कहा, मुझे तो इससे समझ आती है। कैसे? कहा ये एक अमल है। पूछा कैसा अमल? कहा कौन सा अमल? ये एक मालदार शख्स की मिसाल है जो अल्लाह की अतात में नेक काम करता है, फिर शैतान को अल्लाह उस पर गालिब करता है और वो गुनाहों में मसरूफ हो जाता है और इसके अगले नेक अमल गारत हो जाते हैं। ये सही बुखारी की रिवायत है इसी आयत की तफसीर में। अल्लाह ना करे हम में से किसी को ऐसा, यानी आज नेकी कर रहे हैं, मौत से पहले कोई गुनाह का काम करें और उसी पे मौत आ जाए। तो याद रखिए, आज जवानी है, इसमें नेकियों के फल लगा लें, कल बुढ़ापा किसने देखा, जवानी जाकर ना आए, बुढ़ापा आकर ना जाए। आज नेकी कर लें और इन सारी चीज़ों में अपने आखिरत के लिए और अपने दुनिया के बुढ़ापे के लिए कुछ कर लें। मैंने उन लोगों का बुढ़ापा बहुत अच्छा देखा है जो अपनी जवानी अल्लाह के रस्तों में लगा देते हैं। उनको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए होता, वो अपने मामलात में अल्लाह के साथ मामला करते हैं। और आप देखिएगा कि ये सिर्फ एक झिझक होती है, मैं जिस चीज पे अपने आप को माइल करती हूँ, अल्लाह मेरी ये झिझक तोड़ दे कि मैं दूंगी तो कम हो जाएगा, फिर मेरा क्या होगा, फिर मुझे कोई खर्चा ना पड़ जाए, फिर मेरा बुढ़ापा क्या होगा, भाई जब आएगा तो देखेंगे। इससे बड़ा क्या है कि इस्लाम पर इस वक्त इतने खर्चे पड़े हुए, इस्लाम को इस वक्त इतनी मुश्किलात पड़ी है, और आप अपने बच्चियों के रिश्तों और मुस्तकबिल के लिए जेवरा संभाल के बैठे हुए, और आपने बहुओं के लिए ये जोड़ा हुआ है और बेटों के लिए ये जोड़ा हुआ है। अल्लाह सुभान तआला इसको पसंद नहीं करता। यहाँ तक आप देखिए कि मिसाल दी और गौर व फिक्र की दावत दी। अब अगली आयत में उशर है, लिख लीजिए आयत को देखिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम, ऐ ईमान वालों अपने कमाए हुए माल में से खर्च करो। कमाए हुए कौन से? मा कसबतुम, यानी कमाई में से भी दो। और वमिम्मा खरजना लकुम मिनल अर्दी, और इसमें से खर्च करो जो कुछ हमने निकाला है तुम्हारे लिए जमीन से। ये है उशर, हाईलाइट कर लीजिएगा। वला तयम्ममुल खबीस मिन्हु तुनफिकून, और इसमें से रद्दी माल का इरादा ना करो कि इसको खर्च करो, यानी गली सड़ी खजूरें दे दो, अंगूर खराब है तो वो दे दो। वलस्तुम बियाखिज़ीही इल्ला अन्तुग़मिज़ू फीही, और तुम हरगिज नहीं हो इसको लेने वाले अगर वो चीज तुमको दी जाए तो तुम आंखें बंद कर लो, और अगर तुम्हें वो दे तो तुम पसंद ना करो। वालम अन्नल्लाह गनीयुन हमीद, जान लो कि अल्लाह ताला गनी भी और हमीद भी है। दो बार लफ्ज आया गनी का। इस एक आयत के बारे में आता है कि कुछ अंसारी जिनका खजूरों के बाग थे तो वो गली सड़ी खजूरें लाकर सदके में दे देते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ नहीं बिक्री ज़कात में निकाल दी, जो उधार किसी ने नहीं दिया वापस उसको ज़कात में डाल दिया। बरा बिन आज़िब कहते हैं कि ये आयत अंसार के बारे में नाजिल हुई। खजूर पकने के जमाने में लोग मस्जिद नबवी में दो सतूनों के दरमियान रस्सी से खजूर के गुच्छे लटका देते थे ताकि गरीब मुहाजरीन खा लिया करें, और ख़ास तौर पे वो इल्म सीखने के लिए जो असहाबे सुफ़ा आते थे वो खाते थे। बाज़ लोग इन गुच्छों में रद्दी खजूरों के गुच्छे मिला देते और समझते थे कि ऐसा करना जायज़ है। अल्लाह ताला ने इनको मना किया कि ये दुरुस्त नहीं है, क्या पता चला, खराब क्यों देते हो? अगर मासी को सेब देना ही है तो काना सेब जरूर देना, साइज में छोटा ढूंढ के जरूर देना। हमारे यहाँ देखिए गरीबों की जो जिंदगी बदोबर है, वाइट से भी बुरा ही खाते हैं और हमारी फ्रिज का भी खराब सेब ही खाएंगे वो। बच्चे खा रहे हैं पिज्जा, किनारे बच जाएंगे एंड पे, जो आपके बेटे साहब ने बचाए वो मासी को तुम खा लो। ये भी इंसान है, खुशबू उनको भी आती है। आपको इतना खाते पीते फिर आपको पिज्जा हट का पिज्जा इतना अपील करता है तो वो गरीबों को नहीं, और उनको कहना जाओ फ्रिज से दाल निकाल के खा लो, ये मना है। खूब खाओ, दूसरे को भी खिलाओ। 5 बर्गर मंगाए हैं तो 6 मंगा लो, पहले काट के बेटे से आधा उसको दे दो क्योंकि उसे नहीं खाया जाएगा, इतना 4 साल का बच्चा इतना बड़ा बर्गर कैसे खाएगा। लेकिन वो फिर मासियों के साथ जो कुछ हम करते हैं उसको देख लीजिए, और जब लोग दूसरे को दें तो उस वक्त अपने आप को रिसीविंग एंड पे सोच ले। सबसे आसान काम है, सिंपल सा क्राइटेरिया है। मैं कहती हूँ सिर्फ इस एक हदीस पे मुसलमान अमल कर लेना कि मोमिन वो है जो दूसरे के लिए वो पसंद करता है जो अपने लिए। कल कोई मुझे दे, अल्लाह कहते तुम आंख में ही लोगे, जहालत बरतोगे तो लगेगा तुम्हें कि मैं ये कैसे काम कर सकता हूँ। ये देखिए इसमें लफ्ज नए हैं 2-3 अगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्लाह सुभान व तआला ने ये सारा कुछ आपके मेरे सामने पेश कर दिया कि जब लोग इस तरह के मामलात करते हैं कि दूसरों के साथ खर्च करते हुए या दूसरों को देते लेते वक्त अपने आप को दूसरी तरफ ले जाए, सोचो कल तुम्हें लेना पड़े। देखिए ना हालात तो बदलते ही रहते हैं, आज अगर कोई अमीर है तो कल गरीब भी तो हो सकता है ना, फिर क्या होगा? कल जब उसको कोई ये फटे हुए कपड़े दे और जले हुए टुकड़े रोटी के दे तो उसको कैसा लगेगा? बस ये सोच लीजिए तो फिर कभी भी दूसरे को देते वक्त दिल छोटा नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। तयम्मुम का लफ्ज़ है, ये वही लफ्ज़ है जो हम तयम्मुम के लिए बोलते हैं, यम से इरादा करना, कसद करना, यानी देना तो दूर की बात है कभी इसका इरादा भी ना करना। जब कोई तुम्हें दे ऐसी कोई चीज़ तो तुम उसकी तरफ देखना भी ना, सोचना भी ना कि मैंने इसको देना है, और आखिजी अखजा से लेने वाले। ये लफ्ज़ तुखमिजी को देखिएगा, गैन मीम ज़ुआत दुआत कह ले। अलगामिस कहते हैं नशेबी जमीन को, नींद के झोंके को कहते हैं गमजुन, यानी आंख बीच लेना, मुझे नहीं चाहिए। जब नापसंदीदगी होती है ना किसी चीज के लिए तो बंदा कहता है मैंने नहीं लेना। इसी से उर्दू में अब एक लफ्ज़ बोलते हैं इगमाज बरतना, कि हम नहीं इस चीज को लेना चाहते। तो अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं जब किसी को दे रहे हो तो ये सोच लो कल कोई तुम्हें वापस कर गया तो क्या करोगे। और इसके साथ ही देखिए फिर देखने में बड़ी अनरेलेवेंट लगती है लेकिन बात आगे फर्क है, क्या शैतान युईदुकुमुल फक्र व यामुरुकुम बिल फक्षा, शैतान तुम्हें फकीरी से धमकाता है और बेहयाई का हुक्म देता है। वल्लाहु युईदुकुम मग़फिरतम मिन्हु व फ़ज़ला, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और फजल का वादा करता है क्योंकि वो अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह ताला वुसअत वाला भी है और जानने वाला भी है। ये क्या बात हुई? सदके की बातें हो रही थी, हम कोई जिना की बात नहीं पढ़े, शराब की नहीं पढ़े, बेहयाई की नहीं पढ़े, एकदम ये शैतान की बात यहाँ कैसे आ गई? तो लिख लीजिए, शैतान पहले हमें रोकता है किससे? यदकुमुल फकर, दे दोगे तो गरीब हो जाओगे, ये फर्स्ट स्टेप होता है। नहीं ना, तुम्हारे अपने भी तो जरूरियात हैं, तुम्हारे अपने भी तो काम है। अच्छा, फिर पैसा जमा होने लगता है। अब जब अपनी ज़रूरत से पैसा ज़्यादा हुआ तो फिर क्या करता है? अब इसको खर्च करो, फिर फोहश पर खर्च कराता है। घर में ऐसे ऐसे सामान आने लगते हैं जिससे बेहजाई और फहाशी फैलती है। अच्छा, जब ये सब होता है तो शो ऑफ कराता है, दिखावा कराता है। क्या ये सच नहीं है? आज भी देखिए कि फहाशी पैसे वालों से नहीं फैल रही। आज कौन लोग हैं जो सामान्य आसाइश और आरइश और जिबाइश के साथ साथ गंदी चीजें जमा कर लेते हैं? जिनके पास माल ज्यादा है। आम लोगों के पास तो इतना भी नहीं होता। तो ये एक पूरा सर्कल चलता है। पैसा जरूरत से ज्यादा जब लोगों के हाथ में आता है फिर वो कहते हैं जी हमें शादी में कॉन्सर्ट भी कराना है, फोटो सेशन भी कराना है। लाखों रुपया देकर एक एक शादी में फोटो सेशन करके अपनी बहू बेटी दूसरों को दिखाते हैं, क्या ये हया की बात है? ये फोहज फैलता है। और ये चीज कंट्रोल हो जाए तो बाकी चीजें खुद ब खुद पीछे हो जाएंगी, और ये बहुत जरूरी है। आज हमारा मसला भी यही है, हम मुसलमानों में पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ एक शहर के लोग उस शहर की जरूरियात पूरी कर सकते हैं, वल्ला ही पूरी दुनिया से पैसा जमा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप देखें मस्जिदों वाले कैसे रोते हैं, मदरसों वाले कैसे चीखते हैं। हर साल रमजान में लोग पूरी कोशिश करके लोगों को जमा करते हैं कि हमें पैसा दो, तो शादियों पे तो कोई नहीं कहता किसी को खर्च करो। करोड़ों की शादी एक एक, लाखों का जोड़ा एक एक, क्या यईदुकुम अल फक्र व यामुरुकुम बिल फहशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फिरतम मिन्हु व फदला। जबकि अल्लाह तुमको वादा देता है अपने पास से फजल और बख्शिश का, वल्लाहु वासिउन अलीम अल्लाह वसअत वाला और इल्म वाला। बिल्कुल उससे ऑपोजिट अल्लाह कहते हैं, दिल छोटा ना करो, अपने आप को पीछे ना डालो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सारे रास्ते रखे हुए हैं। सूरह सबा आयत 39 में आप पढ़ेंगे, वमान फक्त मिन शईन फहुवा युखलिफुहु, जो भी तुम खर्च करोगे वो सब कुछ तुम्हें पलट के मिलेगा। तो आप देखिए यहां दो रास्ते हैं, अगर आप अपने नोट्स में एक लाइन लगाएं, अल्लाह का रास्ता और दूसरी तरफ शैतान का रास्ता। अल्लाह का रास्ता क्या है? आओ मेरी तरफ तुम्हें और दूंगा, मेरे रास्तों में लगाओ मैं तुम्हें सुकून दूंगा, सब्र दूंगा, खुशी दूंगा। शैतान का रास्ता क्या है? कि ना 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 देना, कमजोर हो जाओगे, कंजूसी की बात करवाता है। अल्लाह की तरफ चलने वाला अल्लाह की पुकार पे लब्बैक कहता है, शैतान के रास्ते पे चलने वाला शैतान की पुकार पे लब्बैक कहता है, और अल्लाह के रास्ते पे चलने वाला बिलाखिर जन्नत में जाएगा, और शैतान के रास्ते पे चलने वाला बिलाखिर जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह के लिए काम करने वाला अल्लाह से जजा पाता है, और शैतान की खुशी पूरी करने वाला शैतान की तरफ जाता है। अल्लाह कहते वल्लाहु वासिउन अलीम, उसको सब पता है। और आप देखिए आयत छोटी सी है लेकिन एक समंदर है, युतिल हिकमत मन यशा, जिसको वो चाहता है हिकमत अता करता है। वह मैं युतल हिकमत फकदूत या खैरन कसीरा, और जिसको हिकमत अता की गई गोया किसको बहुत बड़ी भलाई दी गई। वमा यज़क्कर इल्ला उलुल अलबाब, और अकलमंद ही नसीहत हासिल करते हैं। यहाँ हिकमत की क्या जरूरत थी? तो लिखिएगा, हिकमत से मुराद है यहाँ माल को सही जगह पे खर्च करना। देखिए मनी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट है। एक दफा एक शख्स कहीं जा रहा था, खुश्क साली थी, तो उसने बादलों में से आवाज सुनी कि फलां के बाग पे बरसो। वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, खैर देखा उसने बादल का एक टुकड़ा उड़ता हुआ गया, फिर एक जगह एक नाला है उसमें जाके बहा, और एक खास जगह जमीन पे जाके बसने लग गया। ये शख्स बड़ा हैरान हुआ। खैर थोड़ी देर में उस बाग का मालिक आ गया, कहा तेरा नाम क्या है? उसने जो नाम बताया वही नाम था जो के बादलों में सुना। कहा भी तेरा कहा क्या अमल है? सारे बाग खुश्क है, तेरे बाग पे बारिश हो रही है। कहा कुछ भी नहीं, बस इतना पता है मुझे कि जब मेरी इस बाग की फसल आती है ना, तो मैं उसके तीन हिस्से करता हूँ। ये मुझे भी सबसे अच्छा लगता है। देखिए कभी लोग पूछे ना क्या करें, नहीं तो मैं यही क्राइटेरियन रखती हूँ कि जब भी मनी आपके हाथ में आए उसके तीन हिस्से करें। कहता है एक हिस्सा मैं अपनी बच्चों बीवी घर बार की जरूरियात पे लगाता हूँ, दूसरा हिस्सा मैं अगले साल की फसल के लिए संभाल लेता हूँ यानी सेविंग्स, जिसमें आपके जो ऊपर के खर्चे होंगे, और तीसरा हिस्सा मैं अल्लाह के रास्ते में दे देता हूँ। कब बस अल्लाह को तेरी यही बात पसंद आ गई है, ये है हिकमत। खुद समझो मेरा दिया हुआ कहाँ काम आएगा। बाद लोग तो ऐसे जान छुड़ाते हैं पैसे से कि जान छुटी बात खत्म करें। देखिए कि अल्लाह ने आपको कहाँ लगवाना है। कोई किसान ऐसे ही तो बीज नहीं डाल देता, जरखेज जमीन में डालिए, देखिए कि वहां से मुझे खैर मिलेगी तो फिर फायदा होगा। और ये हिकमत अल्लाह से मांगनी है। खास तौर पे हिकमत से मुराद इब्ने अब्बास कहते हैं कुरान की समझ है, फिक है। इमाम मालिक कहते हैं हिकमत तफक्कुह फिद दीन है, यानी दीन की समझ आ जाए। नबूवत, खशियत, समझ, इसके बहुत से मानी, इस पे मैं अलग एक इंशाल्लाह सेशन दूंगी, पहले भी दिया था, लेकिन बहुत ही जरूरत है आज के दौर में हिकमत के। मैं बात करने की हिकमत नहीं आती, किसी को रोकने टोकने की हिकमत नहीं आती, किसी को नेकी की बात कहते हैं तो पता नहीं कितने भोंडे तरीके से कहते हैं। तो हिकमत में ये सब कुछ आता है, दीन और दुनिया की इस्लाह, सही बसीरत, कुव्वते फैसला, समझ बूझ जिससे बंदा बुरे भले को पहचाने। वक्ती फायदों की तलाश हिकमत नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया रासुल हिकमत मखाफतुल्लाह, हिकमत की बुनियाद अल्लाह का डर है। तो अल्लाह ताला मुझे आपको ये हिकमत दे दे कि अपनी इस छोटी सी जिंदगी से खैर के मामले लें। मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, जिसको अल्लाह फहम देता है, खैर चाहता है, उसको दीन की समझ दे देता है, और अल्लाह ताला मेरे आपके साथ ये मामला करें। आप देखिए एक अकलमंद और एक बेवकूफ इंसान में क्या फर्क है, तकाबुल कीजिए, लिखिए अपने नोट्स में, कॉलम बनाए। दाना बंदा अल्लाह ताला को अपना और अपने आप को अल्लाह का समझता है, जबकि नादान اپنی ذات کی محبت میں گم رہتا ہے. پھر عقل مند یا حکیم شخص اپنے آپ کو اللہ کی پسند میں ڈھال کر اللہ تعالیٰ کی رضا کا بن جاتا ہے، جبکہ نادان شخص جو ہوتا ہے نا وہ ذاتی مصلحتوں میں گم رہتا ہے. پھر جو دانا ہوتا ہے نا اس کی نگاہ بڑی بلند ہوتی ہے، وہ بلند مقاصد رکھتا ہے، جبکہ نادان کوتاہ نظر ہوتا ہے، وقتی فائدے دیکھتا ہے، وقتی نقصان سے ڈر جاتا ہے. جو دانا ہے نا وہ محدودیت سے اوپر اٹھتا ہے، آخرت کے لیے سوچتا ہے. کل کے سبق کو میں انشاءاللہ ان آیتوں کے ساتھ جب جوڑوں گی آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ سود میں اور اللہ کے راستے میں کھل کے دینے والے میں کیا مماثلت ہے. انشاءاللہ آخری خلاصہ کہہ لیں کہ جو عقل مند ہے وہ دنیا سے اوپر آخرت کے لیے سوچتا ہے، جبکہ نادان صرف اس دنیا کے لیے سوچتا ہے، اور دانا جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو ان کے اصل روپ میں دیکھتا ہے، جبکہ نادان چیزوں کی نقل کو دیکھ لیتا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. پھر تسلی دی، وما انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر فان اللہ یعلمہ. اور جو بھی تم کوئی خرچ کرو یا نظر مانو تو اللہ بے شک اس کو جانتا ہے. وما للظالمین من انصار. اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یہ اگلی قسم آ گئی ہے خرچ کی، نظر ماننا. اس آیت کے ساتھ لکھ لیجئے، نظر ماننا کیا ہوتا ہے کہ ہم پہ فرض نہیں تھا لیکن ہم نے فرض کر لیا. پسندیدہ عمل نہیں ہے گو کہ جائز ہے، شرائط ہے اس کی. جائز کام کی منت مانی جائے نمبر ایک، پھر جو منت مانی ہے وہ کر دیجئے کام ہو نہ ہو. فرمایا کہ منت ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ ہے کہ بخیل سے مال نکلوا لیا جاتا ہے. منت مانی پوری نہیں کی کیا کریں؟ جواب لکھئے، اس کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے. سورہ مائدہ میں پڑھیں گے ساتویں پارے کے پہلے رکوع میں. یعنی پھر منت مانی بھی ہے تو اس کو کفارہ دے دیجئے، تین روزے ہیں یا دس مسکینوں کا کھانا یا کپڑا پہنانا ہے. اور ناجائز کام کی منت ماننا شرک ہے، حرام ہے، اس کو پورا نہیں کریں گے. اس کا کفارہ معافی ہے، توبہ کرے کہ اللہ میں کبھی کسی اور کے سامنے ایسے نہیں جھکوں گی. اور جب آپ اللہ کے لیے وہ کام کر دیتے ہیں جو آپ نے کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کرتا ہے. ورنہ تو آپ اللہ کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، تھریٹ ڈالیں گے، نہیں کا بس نظر مان لو. ان تبدو صدقات فنیم ماہیا. اگلا ایشو، صدقہ مطلب ظاہر کر کے دیں یا چھپائیں؟ کہا اگر صدقوں کو تم ظاہر کر دو یہ بھی اچھا ہے. ہاں وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ. ہاں اگر چھپا لو اور فقیروں کو دے دو پھر یہ تو بہت ہی اچھا ہے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ. اور وہ دور کرتا ہے تم سے تمہاری برائیوں کو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو. اگلی بات سمجھ لیجیے، سوالوں کے جواب آ رہے ہیں نا صدقے سے متعلق ہر چیز کے، کہ صدقہ ظاہر کر کے دیں یا چھپائیں. تو اس کا جواب اس ایک آیت میں، ظاہر بھی کر دو چھپا لو. ظاہر کب کرو؟ جب فرض صدقات ہوں. زکات دے رہے ہیں نا، سب کے سامنے دیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے کہ ہم نے بھی دینی ہے. اور ویسے صدقہ دیں نفلی صدقے تو چھپا کے دیں، کیوں؟ ظاہر کرنے سے ریاکاری نہ ہو جائے. دوسری بات ہے، کسی انسان کو دے رہے ہیں جیسے فقیر کو تو چھپا کے دیں، کسی آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں، مسجد کو دے رہے ہیں، کسی بھی بڑی کاز میں دے رہے ہیں تو کھل کے دیں، سامنے دیں تاکہ اس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی. اور صدقے کے فوائد بھی بتا دیے. اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے، حضرت شعبی کہتے ہیں یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عمر تو اپنا آدھا مال لے آئے اور ابو بکر نے جو کچھ تھا لا کر رکھ دیا. آپ نے پوچھا اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ چونکہ آپ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کافی ہے. یہ سن کر عمر رو دیے اور کہا اللہ کی قسم، کسی نیکی کے کام کی طرف ہم لپکے ہیں، اس میں صدیق ہم آپ کو اپنے سے آگے ہی پاتے ہیں. سبحان اللہ. تو ظاہر کرو چھپا لو، بس نیت اچھی رکھو اور دے کے ضائع نہ کرو، اس سے فائدہ ہوتا ہے. بہرحال چھپانا ہر لحاظ سے سیکیورڈ ہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے. اس پہ بہت پیاری روایتیں ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کل اینڈ پہ کچھ روایات آپ کے آگے رکھوں. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ ایک اور ایشو، کیا ہم بے نمازیوں کو صدقہ دے سکتے ہیں یا کافروں کو دے سکتے ہیں؟ کوشچن آتا ہے نا. تو اس کا جواب آئے 272 میں، لیس علیک ہدا ہوں، ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلینفسکم. اور خیر میں سے جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہارے ہی لیے ہے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ. اور تم اللہ کی رضا کی طلب میں خرچ کرتے ہو. और जो खैर में से तुम खर्च करते हो, वमा तुन्फिकु मिन खैरि युवफ्फ इलैकुम वअन्तुम ला तुज़लमून, पूरा तुमको दिया जाएगा बदला और तुम पे जुल्म नहीं होगा। थोड़ी सी शायद की शान नज़ूल दें, आपको सवाल का जवाब मिलेगा। हजरत इब्ने अब्बास की रिवायत है इब्ने अबी हातिम में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म फरमाते थे कि सिर्फ अहले इस्लाम पर सदका किया जाए, यहां तक कि यह आयत नाजिल हुई कि लोगों को हिदायत देने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, उसके बाद जिस मजहब के पैरोकार तुमसे सवाल करे उनको सदका दे दो, आपने ये हुक्म दिया। बस साहबा ने कहा कि हमारे रिश्तेदार जब तक इस्लाम कबूल नहीं करेंगे हम उनको सदका नहीं देंगे, तो उस पर भी आया कि नहीं। तो क्या पता चला, मुसलमान रिश्तेदार है, गैर मुसलमान रिश्तेदार है, सबको दीजिए, हर मौके पे दीजिए। ज़कात गैर मुस्लिम को नहीं दी जा सकती, बाकी नफली में से दिया जा सकता है। हाँ, दिल की मोहब्बत दिलाने के लिए कोई इस्लाम की तरफ मायल है तो वो और चीज़ है। और इससे पता चलता है कि ज़बरदस्ती हिदायत किसी के गले नहीं लगाते। मैंने ख़वातीन को देखा है, अच्छी नहीं ऐसे करती हैं, मसलन यहाँ से गई, अब मासी ने कहा बाजी मुझे अपना जोड़ा देना, नमाज पढ़ना फिर जोड़ा दूंगी तुम्हें। अब वो 2 दिन नमाज पढ़ेगी, जोड़ा लेगी, फिर ख़त्म। तो वो जोड़े की नमाज थी, अल्लाह की नमाज नहीं थी। मजबूर ना करें किसी को, रग़बत दिलाएं कि मैं अपने कपड़े नमाजी को ही देती हूँ, मैं अपने कपड़े उनको देती हूँ जो ज़ाया नहीं करते, ख़राब नहीं करते। तो ज़बरदस्ती किसी को हिदायत आप नहीं दे सकते। अल्लाह ताला कहते हैं वमा तुन्फिकु मिन इल्ला इब्तिगा वज्हिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए दोगे तो फायदा होगा वरना नहीं होगा। और आप देखिए कि इस एक आयत को पढ़ के ऐसे नहीं लगता सिर्फ अल्लाह के लिए दो, कोई मोटिव नहीं, नथिंग, यू कैन गेट एनी थिंग इन रिवॉर्ड, ये आपके मेरे लिए। और अब आखिरी टॉपिक, दीन के रास्ते में अपने आप को डिवोट करने वालों पर खर्च करना। आयत नंबर 273, लिल फुकराए अल्लज़ीन उख्सिरू फी सबीलिल्लाह, उन फकीरों के लिए जो घेर लिए गए अल्लाह के रास्ते में। देखिए सबक के शुरू में क्या लफ्ज था, फी सबीलिल्लाह। यहां अब वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को फुल टाइम दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। असल में ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये पूरे मुआशरे के मुहसिन होते हैं, क्योंकि अगर किसी सोसाइटी में कोई भी दीन का काम नहीं करेगा तो सारी सोसाइटी पे अल्लाह का अजाब आएगा। कुछ लोग अपने आप को फुल टाइम पूरे दिल के साथ अल्लाह के कामों में लगाकर पूरे मुआशरे का हक अदा कर देते हैं, तो कहा कि अब उन लोगों का ख्याल रखना तुम्हारा काम है। असल में साहबे सुफा वो लोग थे जो इल्म लेने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रहते थे, घर बार छोड़ के आए हुए थे, चबूतरों में रहते थे। सुफा चबूतरे को कहते हैं, उन्हीं की बात है कि तुम इनकी खिदमत करो। कैसे, ये कौन लोग हैं, ला यस्ततीउना दरबन फिल अर्दी, ये जमीन में चल फिर नहीं सकते। क्या मतलब है, हैंडीकैप है? नहीं, इल्म का इतना शौक है कि छुट्टी नहीं करना चाहते। सुबह को भी सीखते हैं, फिर शाम को भी सीखते हैं, और वीकेंड पे भी सीखते हैं तो वीकडेज में सीखते हैं। ये कौन कर सकता है, जो करीब रहता है। दूर से आने वाला सुबह आएगा या शाम को आएगा, ऐसी है ना, या वीकडेज में आएगा या वीकेंड पे आ जाएगा, या दोनों में भी आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो उसको कीमत देनी पड़ेगी ना। ये वो लोग हैं जो होस्ट लाइट थे, जो पूरे दिल से दीन को सीखना चाहते थे। अब कमाने जाएंगे तो हदीसें छुटेंगी, अब क्या करें, बैठे यखसब हुमुल जाहिल अग्निया मिन तअफ्फुफ, अनजान शख्स उनको मालदार समझ बैठता है उनके सवाल ना करने की वजह से। गैरत इतनी है, मांगते नहीं थे, भिखारी नहीं थे ये लोग। हजरत अबू हुरैरा का किस्सा आप कई बार सुन चुके हैं, भूख की वजह से बेहोश हो जाते थे लेकिन खाना नहीं होता था। लोग कहते हैं अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ गया, और ये कहते हैं मैं सुन रहा होता था लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं होती थी कि कहूं कि लोगों मुझे भूख लगी है। अल्लाह हमें इल्म का ये शौक लगा दे, अपने ऊपर लीजिए। ये आपकी मेरी छोटी सी क्लास, हम इसको कितना छोड़ते हैं और कितना लेते हैं सिर्फ इन वजूहात पे कि ये हो गया वो गया। मैं कहती हूँ आप इस 2-2.5 घंटे का वक्त जो होता है आपके पास इर्द गिर्द इसके कुछ, इसके बदले में आपको हीरे मोती भी कोई ऑफर करे तो रिजेक्ट करते। हम कोर्स के लिए छुट्टी करते, हम कई लोग हैं जो दुनिया छुट्टी से, मेरा ये नहीं कि जो आ रहे हैं और छुट्टियां करते हैं, मैं उनकी बात भी करती हूँ जो छुट्टी पूरी लेके बैठे हुए घरों में, नहीं आ सकते, जॉब कर रहे हैं। भाई जॉब करके इतना माल किधर लगाना है आपने, खुश हैं आप? नहीं, आपके पास तो करोड़ों जमा हो गएंगे, कहाँ पे बाद में आती है, बिल पहले आते हैं। तो ख्वाहिशों को छोटा कीजिए, बल्कि घर रहने वालों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, मुझे यकीन है आप सबके पास पैसे काम करने वालों से ज्यादा हैं। अल्लाह ताला बस दिल खोल दे हमारे। यख्सबहुमुल जाहिल अग्निया मिन ताफुफ, बेनियाज इतने हैं कि मांगते नहीं है, तारीफुहुम भी सीमा हम, तुम पहचानते उनके चेहरों से, ला यसलून नास इल्हाफा, ये लोगों से लिपट लिपट के सवाल नहीं करते। ये लिहाफ वही है जो आपका हमारा लिहाफ है, ब्लैंकेट रजाई। वमा तुन्फिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाह बिही अलीम, ऐसे लगता है आखिरी जुमला इतना खूबसूरत है, जो कुछ तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे उसको पता है। बंदे को बड़ा दिल होता है पता चल जाए, जैसे लोग शादियों में भी वो देते हैं ना लेन देन, तो पहले मूवी वाले के सामने जाके नोट पकड़ाते हैं दूल्हा को, ताकि रिकॉर्ड बन जाए भी मैं भी 1000 करोड़ देके आई थी। अल्लाह कहते हैं मुझे मूवी की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है तुम क्या देते हो और क्या लेते हो, फिक्र करो अपनी। यहां तक आप देखिए हमने क्या कुछ मांगा, हमने सदका खैरात फी सबीलिल्लाह के बारे में पढ़ा, देकर जतलाने का नुकसान पढ़ा, खौफ और हुजन से पाक हो जाओगे, उशर के बारे में पढ़ा, नजर के बारे में पढ़ा, गरीबों को देने के बारे में पढ़ा, और आखिर में इल्म के रास्ते में खुद को डिवोट करने वालों के लिए पढ़ा। और क्या रह गया पीछे, बेहतरीन किस्म है ये खर्च की, इनमें से किसी मद में जो भी खर्च करता है वो अल्लाह अपने जिम्मे लेता है। कल इससे ऑपोजिट एज पड़ेंगे, कल कोई छुट्टी नहीं कर सकता आप में से, मजबूरी में भी नहीं कर सकता, बस सीधी सी बात है। देखिए इसमें आपने जो कुछ पढ़ा ना, अभी इसमें फर्ज ज़कात की बात नहीं हुई, वो होगी सूरह तौबा में जाके, ठीक है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो पढ़ा आज खुलासा ही हुआ है, कल इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी, क्योंकि अगली आयत को समझने के लिए इसको मजीद समझना ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा रुख बदल दे, हिकमत दे दे, क्या चीज़ कब कहाँ किस जगह हमारे माल की बेहतरीन कदर करेगी उसको उस पर खर्च कर दें कल। वरना याद रखिए अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया से जाते हुए बंदा कहता है यकूल अलब्द माली माली, सारी जिंदगी बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल, और दुनिया से जाते हुए कहता है हाजल फलां हाजा फलां, फलां के लिए फलां के लिए, कुछ भी नहीं उसके लिए। असल में अपनी जिंदगी में दे दें। मैं अभी कभी किसी से कहूँ ना, अपने हस्बैंड से कहूँ फलां चीज अच्छा उसको दे दें, कहते हैं अभी दे दो काम खत्म करो, बाद में पता नहीं कौन क्या करेगा। और दे के देखें, जो दे के खुशी होती है वो संभाल के नहीं होती है, पहले लगता नहीं खुशी होगी, देने के बाद खुशी होगी। अल्लाह ताला आसान करे, या आज इतना ही काफी है इंशाल्लाह, कल मैं मजीद इसमें चंद बातें ऐड कराऊंगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم